नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, युवाओं की ऊर्जा और सृजनात्मक शक्ति वर्ष 2047 तक भारत को बनाएगी विकसित राष्ट्र। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मौजूदा समय में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की जरूरत पर दिया बल। भू प्रशासन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा किसानों को मिला लाभ। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सहकारी समितियों से जुड़े व्यक्तियों से ईमानदारी से कार्य करने का किया आग्रह। और शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले को लेकर संघर्षरत देवभूमि समिति ने कल प्रदर्शन का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा, जिज्ञासा और सृजनात्मक शक्ति भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगी। वे आज सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में आयोजित विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद व नशा मुक्त भारत अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से शिक्षा को केवल करियर का माध्यम न समझकर इसे समाज परिवर्तन, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान और बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार युवाओं की सहभागिता का परिणाम है। शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को गलत आदतों से बचाने के लिए जागरूकता संवाद, परिवार का सहयोग, शैक्षिक संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वविद्यालय में योग और खेल गतिविधियों को प्राथमिकता देने का कुलपति से आग्रह किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि लैंड रिकॉर्ड विभाग में रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना समय की आवश्यकता है। वे आज कुल्लू में आयोजित भारत में भू प्रशासन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसका लाभ प्रदेश में लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में मिलेगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सम्मेलन में 24 राज्यों से आए प्रतिभागी दो दिन तक देश भर में भू अभिलेखों के प्रभावी ढंग से आधुनिकीकरण पर मंथन करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित ये सम्मेलन भूमि व राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजस्व विभाग में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और हर माह आयोजित की जाने वाली राजस्व अदालतों में म्यूटेशन प्रक्रियाओं के अलावा भूमि संबंधी अन्य मामलों को शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 शहरों नादौन, पालमपुर, मंडी और सोलन में नक्शा प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। इस सम्मेलन में प्रदेश के 72 वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त किसानों को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से शुरू की गई इस योजना के तहत देश के किसानों को सालाना 6000 रुपये सम्मान राशि दी जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा किसानों को अब तक 3,616 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है और निश्चित रूप से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए जहां लगभग 8 लाख के करीब जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उसका लाभ मिलेगा और किसान सम्मान निधि की 21वीं जो किस्त जारी की है उसमें लगभग 160 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के हिस्से में भी आए। हमारे अन्नदाताओं को एक बहुत बड़ी मदद आपके माध्यम से मिली है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
ऊना जिला के हरोली उपमंडल के टाहलीवाल गांव में कल देर रात एक कार के ट्रक से टकराने पर लुधियाना की एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में सवार लोग महतपुर से टाहलीवाल जा रहे थे। हरोली उपमंडल के धुग्गे गांव के रहने वाले ट्रक चालक जतेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि सहकारी क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज सोलन में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि सहकारी क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। उन्होंने सहकारी समितियों से जुड़े व्यक्तियों को ईमानदारी से कार्य करने का आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार विपरीत परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार की मदद के बगैर राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर चहुंमुखी विकास को बल दे रही है। वे आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद लगदेवी गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 44 करोड़ और नाबार्ड व विधायक प्राथमिकता के तहत 39 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में 164 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे किए गए हैं और 183 करोड़ रुपए के नए काम आरंभ किए गए हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का कुशल क्षेम पूछा और उनसे बातचीत की। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले को लेकर पिछले दो दिन से अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने कल संजौली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि पिछले शुक्रवार को अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर समिति के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समिति इस FIR को रद्द करने की मांग कर रही है। विजय शर्मा ने कहा कि समिति के सदस्यों के आमरण अनशन को दो दिन बीत गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है।
हमने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार प्रशासन को मनवाने की मांग की थी, पर बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रशासन है ये सत्याग्रह की भाषा नहीं जानता है। इसलिए हमने मजबूर होकर बड़े भारी मन से कल जो है बहुत बड़े आंदोलन की कॉल दी। ये हमने पूरे सनातन समाज का आह्वान किया है, कल हजारों की तादाद में सनातनी संजौली में होंगे। मैं एक सरकार को हमने चेता दिया है, प्रशासन को हमने चेता दिया है कि पूरा शहर आपका तब खुल पाएगा जब हमारी बातें आप मानेंगे।
भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर शुरू किए गए एकता मार्च अभियान के तहत आज चंबा में एकता मार्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद राजीव भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सभी को एक भारत आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई।
आज का कार्यक्रम बड़ा एक अलग अनूठा और अनुपम कार्यक्रम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, उनका क्या योगदान था इस देश की स्वतंत्रता में भी और उसके बाद देश के संगठित निर्माण में, इसके विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया है कि जितने इस देश के अनसंग हीरोज हैं उनको देश की युवा पीढ़ी जाने, देश की तरुणाई जाने और उनका क्या क्या योगदान था, इसके नाते आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, युवाओं की ऊर्जा और सृजनात्मकता शक्ति वर्ष 2047 तक भारत को बनाएगी विकसित राष्ट्र। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मौजूदा समय में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की जरूरत पर दिया बल। भू प्रशासन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा किसानों को मिला लाभ। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सहकारी समितियों से जुड़े व्यक्तियों से ईमानदारी से कार्य करने का किया आग्रह। और शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले को लेकर संघर्षरत देवभूमि समिति ने कल प्रदर्शन का किया ऐलान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।